अब जब एक लड़की जब किसी के घर में आती है तो क्या उसका ताल्लुक शौहर से बनता है या माँ से? मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ तो मैं आज इस गुफ्तगू को अब दो हिस्सों में करती हूँ, एक बहू के नाते से फिर सास के नाते से। दोनों एंगल देख लेते हैं, बात समझ आ जाएगी कि एक औरत जब एक किसी के घर में जाए तो उस वक्त उसकी बात कैसे होनी चाहिए। तो आप देखिए किसी के साथ भी जो ताल्लुकात होते हैं ना उसके तीन मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। यानी एक लड़की ससुराल में गई, क्या वो शौहर और ससुराल के ताल्लुक के बीच में कोई फ़र्क रखे क्या है? और वो सारी बातें जो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं कि जी ससुराल के तो कोई हकूक ही नहीं है, बस शौहर की सारी खिदमत है और दिस एंड दैट। तो यहाँ थोड़ा सा फिर एक और फ़र्क भी बता देती हूँ आपको, और वो क्या है, आज हम आइडियल दौर से नहीं गुजरे। इस्लाम ने जिस तरह नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया ना, उसी तरह इस्लाम ने निकाह का तरीका भी सिखाया, रहन सहन भी सिखाया, ये तो आप सब मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के तरीके में फ़र्क पे सिर्फ चार फिरके हैं आज, पर रहन सहन और दूसरे में आज सैकड़ों मुख्तलिफ तरीके हैं। याद रखिए ये जो बात कहने लगी है ना, इससे पहले एक बुखारी मुस्लिम की रिवायत याद कर लीजिए कि मुसलमान वो है जो अपने दूसरे मुसलमान के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए करता है। हमारे यहाँ औरत के एक अलग दर्स कर दूंगी किसी वक्त अगर मौका मिला और फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप तो सारी औरतें हैं, कि दामाद की क्या और ताल्लुकात होने चाहिए ससुराल से। पर आप में से कोई दामाद है नहीं तो मैं नहीं बोलती, किसी मर्द के थ्रू ये भी लेक्चर कहीं करवा लें, इसमें भी बड़ी कमी बेशी है। लेकिन हम इस वक्त ससुराल के साथ औरत का ताल्लुक देखते हैं, तो आप देखिए कि ससुराल का तस्वुर आते ही जो तस्वुर उभरता है ना, जुल्म और बाहमी टकराव। सास बहू के रिवायती झगड़े से कौन वाकिफ नहीं? निकाह से पहले बहू बड़ी प्यारी, चांद का टुकड़ा, हीरे की कनी, बड़ी स्माइली, वो लड़का इतनी तारीफें सुन चुका होता है अपनी होने वाली बीवी की, मंगेतर, चार छः जोड़े हर महीने साल में जा रहे हैं, ईद जा रही है, शबरात जा रही है, और कहते हैं सोने का किंगरा मिल गया। वो कहता है बस मज़े ही मज़े हैं। इधर रिश्ता जुड़ा और वो लड़की घर आई, कई लोगों की तो अनबन सिर्फ ये शादी की रस्मों में पड़ जाती है। मैंने पिछले दिनों एक वाक्य सुनाया था, ये चंद दिन पहले, चले शादी से अगले दिन भी रिश्ता टूटते देखा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, तलाक हो गई। आपने कभी शादी के दिन रिश्ता टूटता देखा? ये वाक्य हुआ, किसी मुल्क का नाम लिए बगैर बताती हूँ, गवाही मौजूद है। शादी हॉल है, दुल्हन सर से पांव तक सजी पड़ी है, वहाँ केक काटते हैं क्योंकि गोरे काटते हैं तो इनको भी काटना है। लड़के की माँ ने लाड में केक का एक टुकड़ा अपनी नई नवेली बहू के मुंह में डालना चाहा, उसने थोड़ा सा रिजिस्ट किया होगा, वो केक उसके जोड़े पे गिर गया। क्या हुआ, क्यामत आ गई, पर क्यामत ही थी, 5 लाख के जोड़े पे केक गिर गया, वो तो बेइज्जती हो गई, इतनी मेहनत इतने लाखों लगा के सजे। लड़की ने वहाँ खड़े खड़े सास के साथ बदकलामी की। अब ये चल रहा है, ये एक रिफ्लेक्सली हुआ। लड़का जब ये सब देख रहा है, वहाँ से उठता है, माइक पे आके स्टेज पे खड़ा होकर कहता है कि मैं इसको तलाक देता हूँ, इसने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मैं इसको तलाक देता हूँ। उसी हॉल में जहाँ शादी वहाँ पहली तलाक भी पड़ गई। बेसब्री और सेल्फ प्रोजेक्शन, मादा परस्ती, कपड़े अच्छे लगें, सजें संवरें, हम खूबसूरत लगें, ये लगें। अब जो ही लड़की ससुराल में आती है ना तो कुछ ना कुछ खाए, और इसमें एक बहुत बड़ा दखल, आप नहीं मुझे पता लोग गाने गाते हैं कि नहीं, लेकिन शादी के टप्पों का भी है। आप कोई गाना जो आपके बोल जहन में आए शादी के गानों में, सोचिए क्या आप सास के खिलाफ टप्पे नहीं होते? लड़की को गानों के जरिए ही तसव्वुर में दिलाते हैं कि एक बड़ी खौफनाक किस्म की सास और दरिंदा सिफ्त किस्म की नंदे बैठी हैं, और जाती उन्होंने तुम्हारा शिकार कर देना है। चलिए शादी हुई, 2-4-10 दिन गुजर गए, अब लड़की को तनकीदी नज़रों से देखा जाता है, उठने को बैठने को, बल्कि हमारे यहाँ तो कहते हैं चलती फिरती को देखें। वो घर में वो खाला सासें फूफी सासें भी आके बैठ जाती हैं बीच लॉन्च में, आती कैसे है, जाती कैसी है, चलती कैसी है, बुरी, फिर एक एक बात पे देर से उठी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी वो छोटी छोटी चीज़ें, वो सास जो बड़े शौक से बहू को घर में लाती है, कुछ दिन के बाद ही मनफी रवैये शुरू होते हैं। और एक बात कहूँगी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे, वो मुल्की सतह पे कैसे हैं उसको छोड़ दीजिए, सियासी ताल्लुकात क्या हैं, लेकिन हमने हिंदुआना तर्ज़ मुआशरत से बहू के रिश्ते को भी बहुत नेगेटिव लिया, और उसमें तो औरत की हैसियत वाकई सेकंड ग्रेड की है, मर्द की तो पहले पे है, लेकिन लड़की को, बहू को, लड़की का बाप होना इसको नीचे ही समझा जाता है, और औरत पाँव की जूती, और मर्द मर जाए तो औरत साथ सती हो जाए, ये उधर से इम्पोर्ट हुए हमें कुछ शकायत। फिर इसमें एक जहेज की लानत, शादी की रसूमात, मरते दम तक माँ बाप बेटी की टेक केयर करते रहें, बच्चा होने वाला हुआ तो माँ बाप के घर भेज दो, खुद ही पालें पोसें, और इस तरीके से औरत को पोर्ट्रेट किया जाता है कि ये शादी के बाद भी माँ बाप ही की जिम्मेदारी है, और ससुराल वाले जितना भी कर ले कहते नहीं, ये केयर नहीं करते। और एक जुमला, शादी के वक्त देखिए दुआ है तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर ये हुक्म है तो बहुत ही गैर फितरी है कि इस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही बस उठ सकता है। क्यों भाई, तलाक का है तसव्वुर इस्लाम में, हलाल है, जायज़ है, शराबी कबाबी बस पड़ गया तो क्या अब जनाजा ही निकलेगा? गलत तरीका है। हमारी इन चीज़ों की भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि बस मर्द मुख्तलिफ तरीक़ों से औरतों को तंग करते हैं, और ससुराल वाले हर किस्म की खिदमत लेना पसंद करते हैं, बल्कि बास तो कहते हैं वो भाई मैं काम करके थक गई हूँ, मुन्ने के अब्बा बेटे की शादी कर देते हैं। यानी बहू के तसव्वुर के साथ ये होता है कि अब मेरे से घर का काम नहीं होता तो उसको बुला लेते हैं। देखिए वो करेगी, पर आप इस सोच से ला रहे हैं तो फिर तो मासी की बेटी लानी चाहिए थी। फिर आपको इतनी पढ़ी लिखी, इतने लाडले और अकलौती और इतने बड़े बाप की बेटी लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपने उसे खिदमत लेनी है, आपकी मासी की बेटी ज़्यादा अच्छी खिदमत करेगी आपके, क्योंकि उसने सारी उम्र अपनी माँ को आपकी खिदमत करते देखा है, तो बेटियाँ तो अमूमन माँ को ही देखती हैं। खैर नतीजा क्या होता है कि कमी बेशी जब बढ़ती है और फिर आवाज़ें आती हैं कोई कुछ, तो फिर लड़कियों के ऊपर और मसले हैं, फिर वो तावीज़ घंटे शुरू हो जाते हैं, वो सास के खिलाफ, वो बहू के खिलाफ। तो याद रखिए ये सब गलत है। आज अगर आप देखिए कि बहू पर ससुराल के हकूक की बात करें, और ये कहना कि बहू का फ़र्ज़ है कि वो सास ससुर की खिदमत करे, देवरानियों जुठानियों नंदो नंदोइयों की खिदमत करे, जैसे तैसे हों, बेपर्दगी हो, प्रेगनेंसी हो, परेशान अपने बच्चे रुलाए, और अच्छी बहू अच्छी बीवी वो है जो मरते दम तक बस उनकी खिदमत करती रहे, तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तीन बातें आपके सामने रखूंगी, आपको भी समझ आ जाएगी कि कहीं जवानी में आपसे अपनी सासों और अपने ससुराल के बारे में कोई कमी बेशी तो नहीं हुई। अगर हुई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, उनसे भी माफ़ी मांग लें अगर वो ज़िंदा है तो। और दूसरी सूरत यह है कि अगर आप पे ज़्यादती हुई है किसी तरफ से तो अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें। तो याद रखिए कि तीन खानों में अपनी इस बात को बांटूंगी। पहली बात है इतात, बात मानना, ठीक है, ओबे करना, ओबीडियंसी। दूसरी चीज़ है खिदमत, खिदमत तो आप सभी समझते हैं, सब करना। और तीसरी चीज़ है एहसान। नंबर एक इतात, तौन से, खुशी से मानना, हुक्म मानना, इतात करना, बात मानना, ये सिर्फ और सिर्फ मर्द की लाजमी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा बीमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद वबीमा अन्फकू मिन अम्वालिहिम। सूरत निसा में अल्लाह ने साफ कह दिया कि मर्द औरत पर कव्वाम है, यानी 51 और 49, मुराद ये कि 50-50 नहीं, 51 और 49 का ताल्लुक ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि अलैहिन्ना दरजा, मर्द को बस एक दर्जा ज़रूर कम अज़ कम औरत पे हासिल है, और उसकी वजह यह है कि वो कवाम है, मैनेजमेंट करता है, माल कमाता है, टेक केयर है, मज़बूत है, बहादुर है, घर में अगर चोर आ जाए तो मर्द सामने होता है, वज़न उठाता है, मेहनत करता है, और दूसरी बात है कि माल कमाता है, ठीक है, मर्द कवाम है। औरत की जिम्मेदारी है कि अपने मर्द की बात माने, लेकिन कौन सी? सुबह के दर्स में कह के आई हूँ, आपने नहीं सुना होगा कि ला तअतल्लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अपनी बेटियों को अगर ये दर्जा बंदी सिखा के भेजेंगे, इंशाल्लाह इज्जत पाएंगी, वहाँ हक का साथ देंगी, ज्यादती नहीं करेंगी, ससुराल भी इज्जत करेगा। हमारा हाल यह कि गलत बातें भी मानते हैं फिर भी उनसे ही बातें सुनते हैं। मर्द की हर वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल की बात के अंदर है, औरत मानेगी। और ख़ास तौर में इस पे भी मर्द का हक है ज़ौजियत। फरमाया कि मर्द अपनी बीवी को बुलाए, ये हक ले सकता है, रात दिन का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कुछ शरई पाबंदियाँ हैं, औरत नापाकी के दिनों में उसकी एक हद बंदी है, फ़र्ज़ रोज़े चल रहे हैं, इसके अलावा मर्द अपना ये हक ले सकता है, और बीवी को इस काम को खुशी से करना चाहिए, खिदमत समझ के करना चाहिए। हत्ता कि आपने हदीस भी सुनी होगी कि तंदूर पर रोटी बना रही है, अब आप देखिए कि आप सब ज़रा इससे एक सिचुएशन पे नोट कीजिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, शौहर चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो सास कहती है रोटियां पकाओ। चूल्हा सास ने जलवाया हुआ है, बात मर्द की माननी है। ऐसे में बहू पिसती है तो क्या करें, फिर शौहर की माने। बात मानना, इताअत करना मर्द की है। याद रखिए, शौहर के मामले में हदीस में आता है कि औरत किसी की ना माने। ये हदीस की बात है, मैं अपने बात से नहीं कह रही। और हकूक ज़ौजियत क्यों? कि मकसद ही ये था शादी का। देखिए, शादी से पहले क्या बेटे के कपड़े नहीं धोती माँ, रोटी नहीं बहन बनाती? जिस प्यार से माँ रोटी खिलाती है, बीवियाँ तो शुरू में बेचारी वैसी भोली सी होती हैं, पकानी भी नहीं आती, माएँ खिलाती हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं मिल रही थी आपके बेटे को, और अपनी बहू का ये हक सासों को दिलवाना चाहिए। क्यों? इस चीज़ ने आपके बेटे को जिना से रोका हुआ है। मैं एक जुमले में अगर बात कहूँ ना, कि आपको अपनी बहू की घर में हैसियत पता लग जाए, जैसे वैक्यूम क्लीनर है उसकी हैसियत पता है ना, मासी की भी पता है। मासी ना आए तो मैं समझ आ जाती कि आज क्या नहीं हुआ। वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए, समझ आ रही होती क्या नहीं है। अगर आपको मुझे अपनी बहू का मुकाम पता चल जाए ना घर में, दीन की रूह से खास तौर पे, तो दो तरह से देखिएगा। नंबर एक, शरण, वो आपके बेटे को जिना से बचाती है। आप में से कोई माँ ये चाहती है कि बेटा जिना करे, बीवी उसको खुश ना करे, वो घर वालों की बात मानती रहे और मर्द जाके गलत, चलो और जिना नहीं करना, कोई गंदी बेहुदा चीज़ ही देख ले, कोई चाहता है? तो ये तो आपके बेटे की नज़र की, उसकी इज्जत की, उसकी निगाह की, उसकी शर्मगाह की मुहाफिजा है। क्या आप अपनी बहुओं का देन दे सकते हैं इस बात के बगैर? ये खिदमत वो मर्द किसी और से ले सकता है? और दूसरी बात इससे भी बड़ी है, क्या आपकी मुस्तकबिल की अमीन, आपकी नस्ल किससे चलती है? बहू से चलती है। इसके बाद तो दिल करता है ना बहुओं को हाथ पे रखें, हथेली का छाला बनाए। अगर कोई बहू ये दो काम आसन दर्जे पे कर रही है, गोया कि वो अपनी आमद का मकसद पूरा हल कर रही है। आपके बेटे की खिदमत कर रही है, आपके बच्चे पाल रही है, ये छोटा काम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। देखिए ना, एक मासी नहीं आई, दूसरी को बुला लेंगे, एक वैक्यूम नहीं काम किया, दूसरा ले आएंगे। एक बहू सेट नहीं है या वो काम नहीं कर रही, तो दूसरी लानी इतनी आसान नहीं है। आज के बाद अगर आप अपनी बहू का नाम बदल देना, तो आपको इन दो में से जो नाम अच्छा लगता है वो रख लीजिए, ठीक है? अपनी बहुओं को इजाज़त दीजिए कि बेटा मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, तुम पहले अपने शौहर की बात मानो, मैं तो तुम्हारे साथ सारा ही दिन हूँ। और याद रखिए कि मर्दों के तकाजे हर वक्त के नहीं होते। मर्द चाहता है कि बीवी मैं घर में हूँ तो कमरे में रहे, मिसाल है, तो भैया आप लाए उसके लिए, फिर ये क्या गिला कि अब ये कमरे से ही नहीं निकलता? पहले आप चांद का टुकड़ा लाए, तो अब वो निकलता ही नहीं कमरे से, तो खुश हो? ले आते कोई काली लंगड़ी लूली जिसको देखकर बेटा आपका मुंह फेर ले तो खुश होते आप? खुश हो जाइए। पहले तो मेरे पास आके बैठता था, अब सीधा कमरे में जाता है, ये कोई बात करने वाली है? आप मुझे बताइए, आप तो खुश हो। देखिए, नई गाड़ी आती है, 4 दिन उसका शौक नहीं खत्म होता, तो नई बीवी का अगर शौक है उसको खुश होने दीजिए। अच्छी सासें बहू और बेटे को जोड़ती हैं कई चीज़ों में, यकीन करें। बच्चियां भोली होती हैं, कई बेवकूफ़ियाँ उनसे होती हैं, ना समझ होती हैं, क्योंकि वो कोई चालू और कोई बहुत कोई तजुर्बेकार औरतें नहीं हैं। आप माशाल्लाह 20-25-30 साल से घरदारी चला रही हैं, आप समझदार हैं, आप ज़माने साज हैं, धूप छाँव आपने देखी। वो तो 15-16 साल 20 साल की बच्ची है, उसको तो अभी सब्ज़ी भी नहीं काटनी आती होगी, तो उसको गलतियाँ करने दीजिए और उसकी गलतियों को ढांपें, ठीक है? खैर, बात वापस लेके आती हूँ। पहला हक क्या है? इताअत का। दो बातें मिल जाएं तो शौहर की माननी है, ठीक है? दूसरी चीज़ हकूक में क्या है? खिदमत। खिदमत क्या होती है? इसमें जिस्मानी मशक्क़त भी होती है, मसलन खाना पकाना, कपड़े धोना, सीना परोना, सफाई करना, कुछ भी काम औरत जिस्मानी तौर पर भी काम करे। अब इसमें वो किसकी मुकल्लफ है? मुकल्लफ समझते हैं कि नहीं करेगी तो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। उसमें अब शौहर के साथ बच्चे, एक औरत अपने बच्चों के लिए जिस्मानी मशक्क़त करने की मुकल्लफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह लुकमान में क्या फरमाते हैं? वह बस सही नल इंसान अभी वाली दही ही, और हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में वसीयत की, क्या हमलत हु उम्मू, उठाती है उसको उसकी माँ, वहनन अला वहनन, कमज़ोरियों पे कमज़ोरियाँ झील कर, ज़ोफ़ पे ज़ोफ़, प्रेगनेंसी के दौरान की बातें हैं, या आप कह लीजिए कि बच्चा जब पेट में होता है तो वो सारे वक्त और डिलीवरी दोनों को ले लीजिए। फिर इसके बाद वह फिसाल हूँ फी आमई, फिर दूध छुड़ाना है 2 सालों में। आपको याद होगा जिन दिनों में आप बच्चे को दूध पिलाती हैं अपनी जान खींचती है, एक जान में से एक जान और निकल रही है, एक की जगह दो को खिला रही है, कमज़ोरी भी होगी, दिल भी घटेगा, वेट भी लूज़ होता है, दूध पिलाने वाली माँ की बहुत एनर्जी जाती है, ये छोटा एहसान है। एक औरत जो पहले ही एक बच्ची दुबली पतली है, फिर वो साथ एक जान का दूध भी पाल रही है, आप मुझे बताइए ये कोई आसान काम है? तो अगर ऐसी औरतों को अगर थोड़ी सी रुख्सत दे दी जाए कि बेटा तुम तो पहले ही बहुत बड़ा काम कर रही हो, और फिर इस सब का हल आखिर क्या है, अनिशकुरली, ये कि मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदैक, और अपने माँ बाप का, इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ लौटना। इस आयत से क्या पता चलता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए तकलीफ़ें उठाती है, उसको उठानी चाहिए, और दूसरी बात पता चलता है कि उसको दूध पिलाना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा वल वालिदात युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल पूरे दूध पिलाती रहें, ये चलता रहेगा। जो बहू छोटे बच्चों की माँ हो, घर वालों को उसके साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बच्चा रात को जगाता है, दिन को सताता है, ऊपर से शौहर के भी तकाजे ज़ाहिर है, फितरी बातें हैं, खाना पकाना, कपड़े इस्त्री करने देने लेने, ऊपर से जब ससुराल का प्रेशर पड़ता है फिर दिलों में गिरें पड़ती हैं। ये मोहब्बतों वाले ताल्लुक बिगड़ते कब हैं? जब हम अपना वक्त भूल चुके होते हैं। हम तो बड़ा काम करते थे, हम तो ऐसे थे, आप जब थे तो माशाल्लाह आप 2-2.5-3 रोटियां खाते थे, देसी घी था उस वक्त में, आज की बटियां वो नहीं खाती, वो उनकी जान नहीं है, वो इतनी धान पान नहीं है, और हो जाएंगी वक्त के साथ। लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ की हद तक औरत अपनी जिस्मानी हालत, जिसमें फिर आप देखिए बाद दफ़ा एक प्रेगनेंसी हुई तो फिर दूसरी शुरू हो गई, एक को भी दूध पिलाती हैं तो भी दूसरा भी पेट में, तो ऐसी बच्चियों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, इल्ला ये कि वो बहुत स्ट्रांग है और उनको महसूस ही नहीं होता, अल्लाह ताला ने कहा, फिर साथ साथ उसने अल्लाह के भी हक अदा करने हैं। देखिए 5 वक्त की नमाज तो माफ़ नहीं है ना औरत पे, चाहे बच्चा रोए बच्चा धोए जो भी है, नमाज माफ़ नहीं। तो जब उधर मामला है तो ये हो गया, अब 2 चीज़ें हो गई पूरी, पहली क्या है, इतात, बात वाज़ है, सिर्फ शौहर, मुकाबल में कोई आ गया तो शौहर, हाँ शौहर की बात गलत है, गलत तकाजे में तो किसी के भी नहीं माननी, वो तो माँ बाप की भी नहीं माननी। दूसरी चीज़ थी खिदमत, मुकल्लफ है औरत अपने शौहर और बच्चे की। अब रह गया आखिरी दर्जा एहसान का, एहसान के लिख ले, अपनी खुशी से बग़ैर किसी जबर के किसी के काम आना। एहसान माल के साथ भी हो सकता है, ज़ुबान से भी हो सकता है, जान से भी हो सकता है, आप किसी की माली मदद कर दें ये भी एहसान है, आप किसी का जाके काम कराएं, हाथ से काम किया ये भी एहसान है, ज़ुबान से कहें स्माइल, स्वीट वर्ड्स, खंदा पेशानी, मीठी ज़ुबान है, किसी का हाल पूछा, कोई मेहमान आया उसके पास बैठे, कोई बीमार है उसकी आदत की, कोई बात सुना रहा है अपनी तवज्जो से सुनी, कोई दुखी है तसल्ली और तशफ़ी के अल्फाज बोले, कोई खुश है उसको मुबारक दी, कोई तकलीफ़ में उस पर हमदर्दी कीजिए। इस पे अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहता है, सूरत नहल 90, मेरा हाल है हर मर्द को तो याद आनी चाहिए क्योंकि ये खुतबा जुमा में शामिल है, कि इन्नल्लाह यामुर बिलअदली वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता अदल और एहसान का, व ईताई ज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का। अदल बाहमी हकूक को ठीक ठीक अदा करने का नाम है, एहसान उसमें मज़ीद थोड़ी सी बेहतरी का नाम है। तो एहसान का दर्जा औरत अपने ससुराल के हर फर्द के साथ करेगी, ना सिर्फ ये कि ससुराल के साथ करेगी बल्कि हर एक के साथ करेगी, क्योंकि सूरत रोम आयत 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह को मुहसिन पसंद है। और अभी आयत सुनाइए ना कि क्या है एहसान का बदला, मगर एहसान। आज आप किसी से अच्छे होंगे, कोई अच्छा होगा, इसी तरह से अल्लाह ताला सूरत अनकबूत की गालिबन आखिरी आयत है कि इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो तकवा इख्तियार करते हैं, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो नेक किरदार होते हैं। तो अदल से बढ़कर एहसान तक पहुंचना ये एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी है, बात समझ गए। जो औरत जितनी बड़ी मुहसिना होगी उतना अपने ससुराल के साथ एहसान करेगी। अब ये औरत कहाँ से आएगी जिसको दीन समझ आएगा। देखिए एहसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। हदीसे जिब्रील आपने कई दफ़ा सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। जब एहसान की बात आई तो फरमाया कैसे नमाज़ पढ़ो, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कहा फिर अगर तुम नहीं देख रहे तो फिर वो तो तुमको देखता है। ऐसी है ना, एहसान सिर्फ वो बच्ची कर सकती है जो हकीकत में अल्लाह के साथ जुड़ी होगी। वो अल्लाह का फजल समझते हुए अपने ससुराल की खिदमत करेगी, एतात भी करेगी, वहाँ पर एहसान भी करेगी, क्योंकि 20 साल हो गए थे रिश्ता नहीं आया था, फिर मेरी माँ परेशान हो गई, फिर मैं 21 की हो गई तो माँ थोड़ी और ही मुतफक्किर हो गई, फिर 22 की हुई तो उसने इर्द गिर्द वालों को कहना शुरू कर दिया, और आखिर करते कराते 23-24 साल की उम्र में एक अल्लाह वाला आया और आपको ब्याह कर ले गया। क्या इस बात की कदर करने वाली बच्ची अपने ससुराल के साथ अच्छी नहीं होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में कसरत से औरतों को देखा क्योंकि तुम नाशुक्री करती हो। फरमाया अल्लाह की नहीं, शोहरों की। और आपने फरमाया ये भी बात इसी के साथ जुड़ती है कि तुम में से एक बरसों अपने बाप के घर बैठी रहती है, फिर अल्लाह का कोई बंदा आता है और उसको ब्याह के ले जाता है, और उसके घर जाकर कहती है कि मैंने तेरे घर कभी सुख नहीं पाया। यानी वहाँ बैठकर भी बाप और भाई के घर के गुण देखती है। ना समझ है वो बच्चियाँ जो अपने बाप की दौलत का तकाबुल अपने शुरू में जो अभी कैरियर शुरू कर रहा है शौहर उससे करें। देखिए बाप तो माशाल्लाह 50-60 साल के थे, पिछले 40 साल से बिजनेस में थे, तो बेचारा मर्द तो शायद अभी नया नया डॉक्टर बना है, उसके पास तो पॉकेट मनी भी नहीं होगी आपके लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मिसाल है कि उसका भी बाप उसको सपोर्ट कर ही रहा है, तकाबुल की कहीं गुंजाइश नहीं है। कोई औरत अपने शौहर को अपने बाप के साथ तकाबुल ना करे, याद रखिए ये नाशुक्री की हद होगी। अब सवाल पैदा होता है कि औरत पर अपने शौहर के घर वालों के हकूक़ किस हद तक के हैं। ये एक मारूफ जुमला, पहले तो ये सवाल ही बड़ा गैर फितरी है कि जी ससुराल वालों के कोई हकूक हैं और फलां ने कहा था कि कोई हकूक नहीं। देखिए अगर किसी दीनदार ने कहा है ना तो उसने आपके हमारे इस कल्चर के ऊपर बात की है, माजरत के साथ। देखिए अगर मेरे से मेरी ज़ाती राय पूछें जिसकी बिल्कुल 0% आपके लिए अहमियत होनी चाहिए, 0%, ना ये कुरान की बात कर रही हूँ ना हदीस की, लेकिन अगर मिलान की बात करें ना, मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है। शर्त एक है कि घर में दीन का गलबा हो, हिजाब की लिबास की पाबंदी हो, मर्दों को पता हो कि भाभियों के सामने कैसे और भाभियों को पता हो कि देवरों जेठों के सामने कैसे। अगर लिमिट्स में रहकर एक ही घर है और साथ साथ रहते हैं और या एक ही ऊपर नीचे हैं, बेहतरीन बात है, क्योंकि माँ बाप फितरी तौर पर पसंद करते हैं कि उनके सारे बच्चे उनके पास रहें। जो बच्चा दूर माँ उसको याद करेगी, सीधी सी बात है। एक के पास से दूसरे के पास जाएगी तो दूसरे को याद कर रही है, और दूसरे से पहले पे आएगी तो उसको याद कर रही है। बुढ़ापे में औलाद जो होती है ना खेती की तरह नज़र आती है। तो माँ बाप को ये खुशी देने के लिए अगर घर ऐसे हो ना कि साथ साथ घर रहें, तो चले दिन में एक बार भी थोड़ी देर मिल जाए माँ बाप को सारे बच्चे, तो माँ बाप खुश रहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फिर शरई पाबंदियाँ हों। अदरवाइज इस्लाम का मिजाज क्या है? देखिए आप अरब कल्चर में अपनी एक बेटी ब्याह कर देख लें, अल्लाह ही बसाएगा तो वो बसेगी वरना नहीं बसेगी। या बेटी तो बस जाएगी बड़े शौक से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस्लाम ने बड़ी सहूलतें दी हैं, लेकिन उनकी ले आए कोई एक अरब बहू ले आए, वल्ला ही एक हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं निभेगी, क्योंकि आज हमारा इंडो पाक कल्चर और अरब कल्चर जो मोर इस्लामिक कल्चर है आज भी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखिए कि एक मर्द कब शादी करता है, जब वो अपनी बीवी का खर्च उठाने के काबिल हो जाता है। घर उसको लेकर दे सकता है, कमरा लेकर दे सकता है, कमरे में से ही एक साइड पे कोई एक कोठरी बना के दे सकता है, लेकिन जब वो उसका पूरा खर्चा उठा सकता है फिर शादी करता है। क्यों? अल्लाह के नबी के पास आते थे मर्द, अल्लाह के नबी शादी करनी है, का हक महर के लिए कुछ है, कोई लोहे की अंगूठी ही है तो कर देते हैं। इस्लाम में शादी का सारा खर्च मर्द उठाता है, ये भी बात समझिएगा। मर्द को पता है कि ये औरत अब मेरे पल्ले पड़ी, और जो हक महर है इसको सदुका कहते हैं अरबी में, सदुका सिद्क से है, सिद्क कहते हैं सच्चाई को, सच्चाई के कि ये मर्द सच्चा है इस औरत को ब्याहने में, फ्लर्ट नहीं कर रहा, ये पेपर मैरिज नहीं कर रहा, ये सिर्फ वक्ती शादी नहीं है, ये मुता नहीं है, बात समझ गए। तो मर्द जब सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है तो औरतों को पता होता है। हमारे कल्चर में क्या, माँ बाप ने दिया क्या, लाई क्या, और आज एक बड़ा जुमला सुनने में आने लग गया, जी हमने फर्नीचर नहीं लिया, हमने कहा अपनी बेटी को जो मर्जी दे दें। देखिए गौर से सुनिएगा, ये जुमला बहुत कड़वा है। आप फर्नीचर ले लें, सिर्फ एक जोड़ा बेटी का कम कर दें और उसकी कीमत का बेड आ जाता है। आज आज मैं और आप नफ्स परस्ती के उस दौर से गुजर रहे हैं कि जितने का बेड आता है ना उतने का एक जोड़ा भी आता है। क्या मैंने गलत कहा? मैंने ये रिसर्च की है, पता किया, 70 से 80 हज़ार रुपये का आज भी एक अच्छा बेड आ जाता है। तो 70 से 80 हज़ार का आज एक मुनासिब दर्जे का दुल्हन का जोड़ा आए तो बड़ी बात है, आम जोड़ों में भारी जोड़ा आता है। गलत है मेरी इन्फॉर्मेशन के? सही है। तो आपने बेटी को 20 जोड़े देने थे ना, उसको कहो कि तू 18 ले, तो 2 जोड़ों की जगह मैं तुझे फर्नीचर बनाती हूँ, ताकि सारी उम्र मुझे ये ताना ना तू देना कि मुझे आपने फर्नीचर नहीं दिया। आज कपड़े और जेवर और जूतियों पर इतना पैसा लग रहा है। एक वक्त तो जेवर पे लगता था, चलो मुश्किल वक्त में जेवर काम आया, जाके खरीद लिया, बेच लिया, बुढ़ापे में काम आया, चलो जो भी किया उसके ऊपर बात नहीं करते। आज का जोड़ा जो आज 1.25 लाख का है, एक दफ़ा पहन के उतारिए, वो 1.25 का भी क्या, वो 25 हज़ार का भी नहीं रहता, सबको पता है। तो लिहाजा पीछे से शादियों के किबले दुरुस्त होंगे ना तो ये ताल्लुका ठीक होंगे। औरत की कितनी जिम्मेदारी है, हदीस सुन लीजिए सही बुखारी के, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल मरातु राइयतुन अला अहली बैती ज़ौजिहा, औरत अपने खामंद के घर वालों, यहाँ बड़ी अहम चीज़ आपको समझ आने वाली है, लफ्ज़ अहले बैत पे, औरत अपने खामंद के घर वालों और इसकी औलाद की राइया है। राइया कहते रियायत करने वाली, टेक केयर, देखने वाली, वही मसूलतुन, और उससे सवाल किया जाएगा अनहुम उनके बारे में, यानी औरत को अपने खामंद के घर वालों और उसकी औलाद की निगरानी की बाजपुरस होगी। जाबिर कहते हैं कि मैंने निकाह किया, अल्लाह के नबी ने पूछा कुमारी से किया है कि शादीशुदा से, कहा अल्लाह के नबी बेवा से किया है। आपने फरमाया कुमारी से क्यों नहीं किया? और याद रखिए उस वक्त जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र या 15 या 16 साल थी, क्या होती है उम्र, शादी की उन्होंने एक बड़ी उम्र की औरत से। कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे बाप शहीद हो गए हैं और मेरे घर में, बाज़ कहते हैं 7 और बाज़ कहते हैं 9 बहनें थीं इनकी, अब अगर मैं एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करता तो ये भी उन्हीं में से एक होती, तो मैंने बड़ी उम्र की औरत से इसलिए शादी की कि वो इनकी इसलाह करेगी, इनकी निगरानी करेगी, इनकी कंगी चोटी करेगी। उस पे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे इस निकाह में बरकत दे। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे क्या पता चला कि मर्द अगर ऐसी औरत से शादी करता है जो उसके घर वालों की टेक केयर करती है, कोई क़यामत नहीं आ जाती? ये मसले अदालत में लेके जाने वाले नहीं है, सॉरी, कि सास के हक है कि नहीं, बहू करे ना करे, आम तौर पे घर में जो लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अब बस दफ़ा आप देखिए कि एक मर्द कमाता है तो घर में कोई बहन भी हो सकती है, तलाकशुदा बेवा, उसके साथ एक आधा बच्चा भी हो सकता है, माँ भी होती है, बाप भी होता है, कोई छोटे बहन भाई जिनके भी शादी नहीं हुई वो भी हो सकते हैं, कोई हैंडीकैप भाई बहन हो सकता है ना। तो क्या आप जाकर कागज़ कलम लेकर पूछेंगे कि किसके हक फ़र्ज़ हैं किसके नहीं हैं? क्या आप ऐसी बच्चियों से शादी करते हैं या आप खुद ऐसी हैं? हमारा दीन तो राह चलते का हक अदा करने वाला है, क्या घरों में आकर आप ऐसी बात करेंगे? ऐसे मामलात में फिर बच्चियों को एहसान का मामला करना चाहिए। और वही बात है कि तुम एहसान करो तो तुम पे भी होगा। आज आप अपने ससुराली रिश्तों से अच्छी होंगी तो कल आपके माँ बाप के साथ भी कोई अच्छा होगा। शर्त यह है कि आपने इसमें शरई पाबंदियाँ नहीं तोड़नी। जैसे मैं आपका दामाद है तो आपकी बहू का तो वो नंदोई है ना, अब आपकी बहू की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि अकेले नंदोई की खिदमत करें, वो आए हैं तो भाईजन भाईजन कह के चाय बनाए और जाए, ये गलत है, फिर ये जुल्म है, फिर इसकी जिम्मेदारी आप पे आती है। अपनी बहू बेटियों के पर्दे और इस घर का सेटअप ऐसा कीजिए कि उनके पर्दे को पामाल ना करें, वरना याद रखिए कि जितनी बेपर्दगी आज हमारी बहुओं की हमारी वजह से होती है, माँ बाप के घर में इतनी नहीं होती थी, मानते? कुमारी बच्चियों को तो लोग छुपा छुपा के रखते हैं और जो आए ना आए माएँ खिदमत करती हैं, बेटियाँ कुमारी कहाँ जाती हैं चाय पानी करने? ससुराल में किसी बहू की ये जरूरत है कि वो ये कह सके कि मैंने मेहमानों के सामने नहीं जाना? ठीक है, इस्लाम अपनाइए, पूरा अपनाइए, मेहमानी 3 दिन के अंदर होती है, करें। आप की बहू पकाती है ना तो मेहमान को सर्व करना, उसके पास लेके जाना, ये मर्दों का काम है। आप करके अगर आपका वो दामाद है आप लेके जाइए, बहू को क्यों वहाँ खड़ा करते हैं? और याद रखिए कि फिर बाज़ दफ़ा बहुओं पे एक ये भी मुतालबा होता है, पहन ओढ़ो, पता चले हमने खुश रखी हुई है, जेवर भी पहनो, चमकीले कपड़े पहनो, नई नई शादी। अब वो चमकीले कपड़ों में बेचारियां चूल्हों के आगे खड़ी हैं, जेवर चुभ रहा है, बच्चा रो रहा है और खूबसूरती भी है, और आप मेहमानों के बीच में उसके लेके चल रहे हैं, ये ज्यादती है। देखिए, जान अल्लाह को देनी है, किसी को नहीं देनी। वही बात शुरू में मैंने कही थी कि अपने ऊपर लेकर सुनिए, अपने लिए वही पसंद करें जो दूसरे के लिए। जो बात आप अपनी बेटी के लिए नहीं पसंद करते, वो आप अपनी बहू के लिए भी पसंद नहीं करेंगे, और अपोजिट भी इसी का है। फिर इसी तरह आप देखिए कि छोटे बच्चे हैं, नंदों के बच्चे, देवरानियों के बच्चे, जेठानियों के बच्चे, अच्छी बच्चियाँ उन बच्चों के साथ प्यार करती हैं। नई भाभी आती है ना, तो बच्चों को बड़ी प्यारी लगती है, वो चमक दमक हो, छोटे बच्चों को भी देखें, उसकी चूड़ियाँ पकड़ेंगे, उसके बुंदे पकड़ेंगे। आने वाली को घर के छोटे बच्चों से प्यार बहुत करना चाहिए। अगर आप बहू हैं या बनने वाली हैं, आप ससुराल में जाकर अपनी इज्जत लेना चाहें, तो दो में आपको कहना चाहिए कि गुण की बातें बता दूं, घर के बच्चे और घर के बड़े। उधर बुजुर्गों को भग दें थोड़ा, घर में नानी दादी होगी, कोई भी बड़ी होगी, और इधर भाभियों के बच्चों को खेल। जिस नई बहू ने भाभियों के बच्चों को अपना गर्विदा कर लिया और अल्लाह के लिए बुजुर्गों की खिदमत कर ली, आपके मियाँ की जरूरत नहीं है वो आपको मैली आंख से देखे। आपकी दादी सास ने अपने पोते को सबके बीच में डांट देना, खबरदार इसको ऐसे ना बोलना, नहीं समझे? बड़े आपका साथ देंगे, एहसान कीजिए। ना खिदमत है, ना हक है, ना इताअत है, इसमें एहसान है। आप प्यार करें, कल आपको मिलेगा। देखिए, एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो अक्सर पीछे याद करती है, माँ को याद करती है, नेमुल बदल मौजूद है, सास को मान लीजिए। और ये जुमला भी बोलने दीजिए मुझे, ये लोग कहते हैं ना, हम इसको बेटी बना के रखेंगे, बहू नहीं। ये गलत जुमला है, ये गैरफितरी जुमला है। बेटी नहीं हो सकती बहू, क्योंकि बहू अपनी जगह बड़ा प्यारा रिश्ता है। बेटी को आप चार बातें सुना ले, शाम को फिर आपके गले लगेगी, आपको दुख होगा, बेटी को सबसे ज़्यादा दुख होगा। बहू के साथ इतने फ्रैंक ना हो, बेटी को डांटेंगे वो फिर आपकी है, बहू को आप नहीं डांट सकते। बहू को बहू बनाइए, सास सास बने, माँ को माँ रखिए, बेटी को बेटे। हर रिश्ते की एक अपनी चाशनी है। और फिर इसी तरह आप देखिए कि जब आप इस चीज़ को सामने रखती हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से बात आएगी। तो खुलासा क्या है अभी तक, कि आने वाली बहू को कंफर्टेबल माहौल मिले, वो अच्छे तरीके से देखे, मोहसिना बने, करके छोटे बड़े की इज्जत करे, और इस नीयत से करे कि मैंने इस सब का बदला अल्लाह ताला से लेना है। घर में बच्चे हैं, इवन शौहर के पहले बच्चे हो सकते हैं, पहले दौर में ऐसे हो जाता था, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मामला रखिए। फिर आप देखिए कि अब उलट चलते हैं दूसरी तरफ।